ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। शास्त्रीय भाषाएं भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के संरक्षक के रूप में कार्य करती हैं, जो प्रत्येक समुदाय के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती हैं। मंत्रिमंडल द्वारा मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी मिलने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्रिमंडल को धन्यवाद दिया। श्री शिंदे ने कहा कि ये एक लंबी लड़ाई जीती गई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मराठी वास्तव में एक शास्त्रीय भाषा है, ये साबित करने के लिए कि लीला चरित्र, ज्ञानेश्वरी, विवेक सिंधु जैसे महाकाव्यों का हवाला दिया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता केंद्र में शामिल होने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है। ये एक वैश्विक मंच है जो दुनिया भर में सहयोग और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। इसमें भारत की भागीदारी से निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाने और ऊर्जा संरक्षण में मदद मिलेगी। ये कदम हरित गृह गैस उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों के अनुरूप है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस निर्णय से भारत को रणनीतिक ऊर्जा के तरीकों और नए समाधानों को साझा करने वाले विशिष्ट 16 देशों के समूह तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी। मंत्रिमंडल ने टिकाऊ कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भरता के लिए कृष्णोन्नति योजना को भी स्वीकृति दी है। दोनों योजनाओं को 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावित व्यय के साथ लागू किया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 57,000 करोड़ रुपए से अधिक और कृष्णोन्नति योजना के लिए 44,246 करोड़ रुपए शामिल हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,72,000 से अधिक रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के बोनस को स्वीकृति दी है। बोनस पर 2,029 करोड़ रुपए व्यय होंगे। बोनस का भुगतान रेलवे कर्मचारियों को रेलवे के प्रदर्शन में सुधार की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करने के लिए एक प्रोत्साहन है। पात्र रेलवे कर्मचारियों को बोनस का भुगतान प्रत्येक वर्ष दशहरा से पहले किया जाता है। इस वर्ष भी लगभग 11,72,000 गैर राजपत्रित कर्मचारियों को बोनस का भुगतान किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने 10,103 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ वर्ष 2024-25 से 2030-31 के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन को भी स्वीकृति दे दी है। अगले 7 वर्ष में भारत को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया। नई योजना सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और तिल जैसी प्रमुख तिलहन फसलों का उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चेन्नई मेट्रो रेल के दूसरे चरण को स्वीकृति दे दी है। 3 गलियारे वाली स्वीकृत लाइनों की कुल दूरी लगभग 119 किलोमीटर होगी। इसमें 128 स्टेशन होंगे। परियोजना को पूरा करने में 63,246 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसे वर्ष 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन 6 अक्टूबर तक चलेगा। इस वर्ष का सम्मेलन हरित परिवर्तन के वित्त पोषण, भू आर्थिक विखंडन और विकास जैसे विषयों पर केंद्रित होगा। गृहमंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में नगर निगम की कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। वे गांधीनगर के मनसा शहर में 421 बिस्तरों वाले अस्पताल की आधारशिला भी रखेंगे। भारत, नेपाल और बांग्लादेश ने भारत के बीच नेपाल से बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। काठमांडू में कल हुए समझौते से नेपाल को पहली बार बांग्लादेश को बिजली बेची जाएगी। इससे पहले नेपाल केवल भारत को बिजली बेचता था। हरियाणा में 90 सदस्य विधानसभा के लिए कल वोट डाले जाएंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। इस चुनाव के लिए 1031 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। आकाशवाणी FM रेनबो चैनल पर शाम 7 बजे से मैच का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जाएगा। आज ही दोपहर एक अन्य मैच में वेस्टइंडीज का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। विश्व कप के पहले दिन शारजा में कल बांग्लादेश ने स्कॉटलैंड को 16 रन से और पाकिस्तान ने श्रीलंका को 31 रन से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।